अध्याय 2 2.69 यानीशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सानीशा पश्यतो मुने। अनुवाद श्री गोपाल जी के द्वारा। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं जाग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मसंयमी के लिए रात्रि है। नाइट शिफ्ट करते हैं क्या लोग? ऐसे ही लग रहा है। नाइट शिफ्ट तो बहुत लोग करते हैं, क्या वो सब आत्मसंयमी है? ऐसा प्रश्न मन में आता है। नहीं, क्या कहते हैं, जो रात्रि सब जीवों के लिए जो रात्रि है आत्मसंयमियों के लिए वो क्या है? दिवस है, अर्थात काम करने का समय है, दिवस है, तो नाइट शिफ्ट करते हैं। और नाइट शिफ्ट तो बहुत लोग करते हैं, तो क्या वो सब आत्मसंयमी है? जो रात को सोते नहीं वो आत्मसंयमी होते हैं क्या? तो यहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या चल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 2.54 दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछे थे। कितने प्रश्न पूछे थे? चार प्रश्न पूछे थे। एक उसमें का क्या प्रश्न था? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता है? एक प्रश्न था चार में से, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे चलता है? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता है? तो उत्तर में भगवान यह श्लोक बता रहे हैं। भगवान उत्तर में क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की जो चाल होती है वो संसारी व्यक्ति के चाल से बिल्कुल उल्टी होती है। अर्जुन ने पूछा था स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता है, भगवान इस समय जो बता रहे हैं इस श्लोक में उत्तर में वो यह बता रहे हैं कि जो भौतिक संसार में आसक्त रहता है, भौतिक संसार को ही सब कुछ मान लेता है, उस व्यक्ति के चाल से स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की चाल कैसे होती है, एकदम उल्टी चाल। यह इन शॉर्ट भगवान इस श्लोक में बताना चाहते हैं। तो या निशा सर्वभूतानां, जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, यह श्लोक हम कई बार पढ़ चुके हैं मंगलाचरण में के बाद पश्चात हम श्लोक का रिसाइटेशन में यह श्लोक है कि या निशा सर्वभूतानां, अर्थात जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, जो आसक्त व्यक्ति है भौतिक संसार के प्रति ही केवल जो आसक्त है, जिसको अज्ञानी भी कहते हैं यार, बहुत ज्यादा आसक्त भी कहते हैं, जो ऐसे व्यक्ति है और मुनि है, यहाँ जो मुनि का जागृति संयमी सा निशा पश्यतो हो मुने, जो भौतिक संसार में आसक्त व्यक्ति है, और दूसरा कौन है, जो मुनि है, मुनि अर्थात कृष्ण भावना भावित है, नहीं कृष्ण भावना भावित तो महामुनि होते हैं ये मुनि की बात कर रहे हैं, पर कृष्ण भावना भावित कौन होते हैं, महामुनि, क्योंकि वो नित्य कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो मन को नियंत्रित करने के आगे की जो स्थिति है, मन को कंट्रोल करने के आगे की जो स्थिति है, वो ये है भगवान का प्रेम, और वो भक्त करते, इसलिए वो कौन है, महामुनि है। तो यहाँ पे पश्चतो मुने कहा है, तो मुनि अर्थात ज्ञानी भक्त बोल सकते हैं। तो ज्ञानी भक्त और संसार में आसक्त व्यक्ति, इनमें क्या फर्क है, तो इनमें बहुत बड़ा फर्क है, दिवस और रात्रि में जो फर्क है वो इन दोनों में फर्क है, एक दिवस के जैसा है और एक रात्रि के जैसा है, इतना बड़ा फर्क इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। मुनिगण जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, उनकी विशेषता क्या होती है, जो भक्त होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वे नित्य भगवत नाम के या भगवत भाव के युक्त होते हैं, है ना, नित्य क्या होते हैं, भगवत भाव के युक्त होते हैं। वो कभी भी कोई भी कार्य करते हुए दिखे तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि ये भौतिक कार्य कर रहे हैं, वो भौतिक कार्य भले ही कर रहे हो परंतु उनका अंदरूनी भाव क्या है, भगवत भाव। मान लो कोई व्यक्ति है और मंदिर में इलेक्ट्रिक फिटिंग कर रहा है, बल्ब लगा रहा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रहा है मंदिर में, भक्त है इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रहा है, अभी आप क्या समझेंगे इसको, क्या समझना चाहिए, हाँ मंदिर के लिए वो कार्य कर रहा है, किसी की आज्ञा का, मंदिर के भक्त के आज्ञा का पालन कर रहा है, और वो बल्ब फिटिंग कर रहा है, किसी भक्त ने प्लानिंग दिया ऐसा ऐसा करो, तो उसकी सेवा जो है कौन सी सेवा है, ये सांसारिक सेवा है कि आध्यात्मिक सेवा है, कैसे, हाँ भगवान की वो सेवा, ऐसी सेवा आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते, मंदिर में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रहे, मान लो घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग कर रहे, हाँ तो ये सांसारिक कार्य है कि आध्यात्मिक कार्य, हाँ सांसारिक, हाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में यदि आप वो कार्य करते हैं, भगवान को, भगवान कृष्ण को स्मरण करके, आपके घर में भगवान फोटो के रूप में है या विग्रह के रूप में है, नहीं है दोनों रूप में तो नाम के रूप में कभी भी है भगवान, आप जिह्वा पे भगवान का नाम ले सकते हैं, तो भगवान के नाम का उच्चारण करके प्रत्येक कार्य को हम आध्यात्मिक कार्य बना सकते हैं, प्रत्येक कार्य को हम आध्यात्मिक कार्य बना सकते हैं यदि हम भगवान के नाम का उच्चारण, जो कार्य हम मंदिर में करने से जो आध्यात्मिक प्रगति होती है वही कार्य घर में करने से, लेकिन नाम लेकर, भगवान के नाम का उच्चारण करके वही कार्य यदि हम घर में करते हैं तो क्या हो जाएगा, वह भी भौतिक कार्य आध्यात्मिक बन जाए। तो फिर प्रश्न आएगा भाई काम करे कि नाम लेवे। हाँ, कई बार हमको एक जगह एक भक्त बहुत पहले मिले थे, हमने उनको कहा था प्रभु जी भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उनका वो अनुभव बताते हैं, बोले प्रभु जी स्टेशन पे खड़ा था, भगवान के नाम का जप कर रहा था, वो इतना इन्वॉल्व हो गया और मुझे उस साइड जाना था, इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं ट्रैक पे उतर के जाने लगा और वो सामने लोकल आ गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बोले एक सेकंड में तुरंत में प्लेटफॉर्म चढ़ गया और बच गया। तो फिर उनका प्रश्न आगे ये था कि ऐसा काम करते हुए भगवान का ऐसा नाम लिया तो काम में कैसा ध्यान लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? ये प्रश्न आता होगा ना मन में, नहीं आता है? भगवान का नाम लेना है काम करते वक्त, कर्म करते वक्त, और अपना कर्म मान लो माता जी लोग चपाती बेल रही है, तवे पे डाल दी, हरे कृष्णा कृष्णा, तवे पे हाथ रख दिया चपाती के बदले। हाँ। हाँ, कोई भी प्रैक्टिस से कोई भी कार्य करना हो अच्छे से तो क्या करनी होती है? प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से मनुष्य क्या हो जाता है? परफेक्ट तो नहीं होता है पर वहाँ तक जाने का प्रयास कर सकता है। संसार में कोई परफेक्ट तो है नहीं, परंतु प्रैक्टिस से हम उसमें एक्सपर्टाइज, हम एक्सपर्ट हो सकते हैं उसमें प्रैक्टिस करें। जैसे माता जी को पहले चपाती बेलना आती थी क्या? नहीं आती, बाद में सीखे, प्रैक्टिस से आ गई। कोई भी कर्म लीजिए, कोई भी कर्म, क्या कोई भी कर्म करते वक्त आपके मन में कभी भी विचार नहीं रहता है? ठीक है, मैं भगवान के नाम की बात नहीं कर रहा हूं, पर मान लो कर्म कर रहे हैं, जिस समय आप कर्म करते होते हैं क्या उस समय आपके मन में कभी भी कोई भी विचार नहीं होता है? होता है ना, होता है ना। फिर ये एक विचार एक्स्ट्रा डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या प्रॉब्लम होता है? कोशिश जोरदार कीजिए, धीरे धीरे कोशिश मत कीजिए, एकदम जोरदार कोशिश करना चाहिए। हैं, तो कोशिश ही करते रहेंगे फिर उस दिन के जैसी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो सब कोशिश नहीं, कोशिश करना जरूरी है लेकिन थोड़ी स्पीड पकड़ना भी जरूरी है। नहीं, फिर भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इमरजेंसी में ही गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बेसिकली परीक्षा की घड़ी कौन सी है? इमरजेंसी। वो इमरजेंसी में गड़बड़ करेंगे तो परीक्षा फेल। इमरजेंसी मींस एग्जाम, परीक्षा। उस परीक्षा के ही तो घड़ी में हमको गड़बड़ नहीं करना है, उसी में पास होना है। साधारण समय पे हम पास होते हैं, गड़बड़ नहीं करते तो वो तो बहुत कॉमन नॉर्मल बात है, साधारण बात है। परंतु जब किसी भी समय एक इमरजेंसी आती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, कठिन परिस्थिति आती है, कठिनाइयाँ आती है, उसी समय तो हमको अपना चित्त स्थिर करना है, उसी समय तो हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए ना। इमरजेंसी के समय तो हमको होना ही चाहिए भगवान का स्मरण, सारे समय होना चाहिए लेकिन इमरजेंसी के समय मस्ट जरूर होना चाहिए। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस का स्पीड बढ़ाने से, स्टेप बाय स्टेप। प्रैक्टिस का स्पीड ही नहीं बढ़ा है, वो पहले जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। पहले भी 16 माला करते थे, कभी कभी 4, कभी सुबह 4, कभी दोपहर 4, कभी ऐसा करते करते 16 करते थे, अभी भी वैसे ही 16 कर रहे हैं। 2 साल पहले भी वैसे ही करते थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में कोई गड़बड़ है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन कैसा है? प्रोग्रेसिव लाइफ, गतिशील है, विकासशील है। हाँ? विकास इसमें होना चाहिए, वैसे के वैसे बैठे नहीं रहना चाहिए। तो वो आध्यात्मिक जीवन नहीं, समझ लेना चाहिए। यदि हम वैसे के वैसे वहां के वहीं हैं तो समझना चाहिए कि हम सांसारिक इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं, ऊपर नहीं उठ रहे, वहीं के वहीं हैं। अभी तक हमारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही चल रहा है। हाँ? उसके ऊपर आना चाहिए, उसके ऊपर फास्ट प्रोग्रेस करना चाहिए, फास्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसी यहाँ पे जो मुनिगण जो होते हैं वो क्या करते हैं? नित्य भगवत नाम से युक्त होते, उनको इतनी प्रैक्टिस होती है, इतनी प्रैक्टिस होती है कि उनके रोम रोम में कृष्ण नाम रहता है, पूरे शरीर में कंपन होते रहता है कृष्ण नाम का। तो वो जो काम करते हैं, वो कर्म करने से उनके ऊपर कोई, कर्म करते वक्त नाम लेने से उनके ऊपर कोई खराब प्रभाव नहीं, उल्टा उनका जो कर्म है वो क्या हो जाता है, कर्म योग हो जाता है। जैसे एक माता, इसके पहले ही उदाहरण दिए हैं, एक माता जब अपने किचन में कुकिंग करती है, बनाती है सब्जी रोटी, और बालक छोटा वो बाहर खेलते रहता है, बच्चा वो किचन में है और बच्चा बाहर आंगन में खेल रहा है। अरे बॉम्बे में आंगन ही नहीं है, गांव की बात समझिए। तो आंगन में खेल रहा है, बच्चा रोता है, माता को पता चलता है कि जानबूझ के नाटक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरे समय जब रोता है तो माता तुरंत समझ जाती कि नहीं, अभी इसको वास्तव में कुछ हुआ है। वो वहां से अपना वो कर्म करते करते भागते भागते जाती है और अपने बच्चे को ठीक से उसको आधार देती है, वहां पे पता चलता है। क्यों? क्योंकि जो कर्म कर रही है वो कौन से कॉन्शियसनेस में कर रही है, अपने बच्चे के कॉन्शियसनेस में कर रही है। ऐसे ही आप कर्म कर रहे हैं, अपनी कर्म कीजिए, आप भी कृष्ण कॉन्शियस होकर कर्म करेंगे, कृष्णा के कॉन्शियसनेस में कर्म करेंगे, तो ध्यान चित्त संपूर्णतः कृष्ण की ओर रहेगा। ऐसे मुनिगण करते हैं। आपके मन में मुनि बोलते से क्या सामने पिक्चर आया होगा, 2 फुट दाढ़ी लंबी, हाँ लंबे लंबे जटाधारी बाबा, भगवे वस्त्र और बहुत बड़ा कोई पहाड़, पटाख से ये 3 पिक्चर आ गए होंगे आपके सामने, है कि नहीं? परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण भक्त है, जो भगवान कृष्ण का नित्य स्मरण करता है, जिसके मन में जीवों के प्रति दया है, और जो वैष्णव की सेवा करता है, वो मुनि है, वो गृहस्थ मुनि है। गृहस्थी में रह के भी वो मुनि है, भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है। 3 बातें करनी है, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान का नित्य स्मरण, दूसरी बात क्या है, भगवान के जो भक्त है उनकी सेवा, तीसरी बात क्या है, जीवों के प्रति दया, दूसरों के प्रति दया भाव, है ना, ये होना बहुत जरूरी। जो ये जिसमें ये 3 बातें हैं वो भगवत भक्त है और वो मुनि है, सर्वश्रेष्ठ मुनि। इस कलयुग में, इस संसार में रह के भी हम मुनि हो सकते हैं, हम सब मुनि हैं यहाँ पर बैठे, यदि हम इन 3 बातों का पालन करते हैं तो आप सब मुनि ही है, कोई उसमें अंतर नहीं है। तो उनका जीवन भगवत भगवत भक्ति में लगे रहने से उनका जीवन ज्ञानमय रहता है, और भगवत भक्ति में रहने से उनका जीवन दिव्य ज्ञानमय रहता है, और इसलिए उनका जीवन में आनंद भी रहता है। भगवत भक्ति में लगे रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, और भगवत भक्ति में लगने से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान जब प्राप्त होता है, कौन सा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जो क्या करता है, नित्य आनंद देता है। तो वो जो मुनि होते हैं इस प्रकार से नित्य क्या रहते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो कौन होते हैं, भगवत प्रेमी होते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो इस प्रकार से भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, अल्टीमेटली उनको ज्ञान भी मिलता है और आनंद भी मिलता है कि नहीं। कभी हम सांसारिक जगत में देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है लेकिन आनंद नहीं। तो कहते बहुत बार श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होता है, पहले प्रथम श्रवण कर रहे ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसी ज्ञान को यदि और बढ़ाना है तो प्रश्न पूछना चाहिए। श्रवण कर रहे, सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे, सुन। वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर, सुंदर था सर प्रवचन। कोई प्रश्न आया मन में? प्रश्न पूछना चाहिए। आगे भगवद गीता में कहेंगे भगवान, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। प्रश्न पूछने से ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो बढ़ना भी चाहिए और बढ़ के उसका अनुभव भी होना चाहिए। ये कब होगा? जब आप प्रश्न पूछें। तो ये जो मुनि गण होते हैं, इनके पास ज्ञान भी होता है, ज्ञान बढ़ा हुआ भी होता है, और ज्ञान से उनको आनंद भी प्राप्त हुआ होता है, और उनका जीवन आनंदमय रहता है। परंतु अब दूसरे व्यक्ति की इस श्लोक में, दोनों लोगों की, दो टाइप के लोगों की बात हो रही है इस श्लोक में, जो मुनि है और जो आसक्त है, संसार में आसक्त है, अज्ञानी है, ऐसे दो प्रकार के लोगों की भगवान यहां पर बात कर रहे हैं। और दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं एकदम। जो ये करते हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट वो दूसरे करते हैं। जो मुनि करते हैं उसके विरुद्ध एकदम कार्य जो है वो संसार में आसक्त लोग करते हैं, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जो लोग संसारिक बातों में आसक्त रहते हैं उनको ऐसे आनंदमय जीवन के विषय में कुछ भी पता नहीं। मुनिगण जिस प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं, उस आनंद के विषय में सांसारिक लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता है। कुछ भी उनको कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। अर्थात जो मुनियों को ज्ञात हुआ होता है, जो भक्तों को ज्ञान हुआ होता है, वो सांसारिक कार्यकलापों में जो आसक्त है उनको बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? आनंद का बेस क्या है? मुनिगण आनंदित रहते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। कैसे? भक्ति, भगवत भक्ति में रहते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, इसलिए उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसलिए उनको आनंद भी प्राप्त होता है, आनंद का अनुभव करते हैं। जो संसार में संसारिक लोग होते हैं उनको ऐसे दिव्य ज्ञान और दिव्य आनंदमय जीवन के प्रति कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। ये दिव्य आनंद क्या है यह भी उनको पता नहीं रहता है। क्यों पता नहीं रहता है? देखिए मैं सोच, मुनियों को आनंद क्यों प्राप्त होता है? हाँ, जो सिंपल तो उत्तर है, जो इसलिए, अच्छा, जो आसक्त है संसारिक जगत में, आसक्त है, सिंपल तो है, आसान है। क्योंकि वो इस संसार में पूर्णतः फंसे रहते हैं, इस संसार का वो नित्य स्मरण करते हैं। भक्त जो मुनि है वो क्या करते हैं? भगवान के या भगवान के भक्ति में रहते, अर्थात भगवान के नाम का स्मरण करते रहते मन, अंतर मन में, इसलिए आनंदमय जीवन का अनुभव करते हैं ज्ञान प्राप्त करके। अब वही बात इनके साथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेसिक बात ही ये नहीं करते। एकदम बेसिक जो बात है वो ये लोग नहीं करते हैं, वो पूर्णतः संसार में फंसे हुए, पूर्ण 100%। कभी भी उनके अंतर मन में भी कौन सी बात चलते रहती है? घर पे आए, ऑफिस से थके आ रहे, घर पे भी आए तो अभी टीवी पे कौन सा प्रोग्राम चल रहा हो?
अच्छा 9 से 10 वाली वो सीरियल चल रही है? नहीं, वो चैनल पे वो दूसरी चलते रहती है। अच्छा, वो दूसरी सीरियल आके 10 बजे सीरियल देखी। सीरियल देखते देखते भी दूसरे विचार, टीवी देखते देखते भी दूसरे विचार, तीसरे विचार। जो कोई भी कर्म करते हो, कर्म करते हो तो उसका विचार नहीं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे ऐसे अनेक विचार। तो जब इतने सारे विचारों के साथ जब यह व्यक्ति रहती है, एक ही समय में अनेक प्रकार के वैरायटी विचार भी, एक टाइप के नहीं, वैरायटी एकदम वैरायटी, एकदम वैरायटी। कभी एकदम अमेरिका का विचार आता है, कभी पड़ोसी का विचार आता है, एक ही समय में वैरायटी। तो ये इतने सांसारिक जगत के कॉन्शियस रहने से या नित्य चिंतन करते रहने से व्यक्ति को जीवन का आनंद समझ में नहीं आया। यह बात बिल्कुल सत्य है, आप उसको हृदय पे लिख लीजिए। नित्य सांसारिक बातों का ही चिंतन करते रहने से वो जीवन का जो आनंद है, जो मुनिगण अनुभव करते हैं, जो श्रेष्ठ गण जो है, श्रेष्ठ मनुष्य जो अनुभव करते हैं, भक्त जो अनुभव करते हैं, वो अनुभव इन लोगों को नहीं हो सकता। क्योंकि नित्य चिंतन हो रहा है सांसारिक जगत में, तो यह लोग यह नहीं जान सकते हैं। वो शरीर से जो कर्म करते हैं, शारीरिक कर्म कैसे करते हैं, शरीर से ही तो करते हैं। तो शरीर के से जो ये लोग कर्म करते हैं, उन कर्मों में ही ये फंसे रहते हैं, उन कर्मों में ही फंसे रहते हैं। इतने फंसे रहते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते, इतने फंसे रहते हैं उन कर्मों में। अर्थात ये जो शरीर है, यह नित्य क्या है, कर्मों में फंसा रहता है। नित्य कर्म के विषय में ही वो लालाहित रहता है शरीर। देखिए अब कर्म अर्थात आप केवल अपना ऑफिस का काम मत सोचिए। आप सोचेंगे ऑफिस का तो काम हम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी निपटा देते हैं। है ना, कर्म अर्थात केवल ऑफिस का ही काम नहीं है, वो तो एक काम है। फिर कर्म अर्थात इस शरीर से जो भी मूवमेंट आप करते हैं, शरीर को तृप्त करने के लिए जो भी कार्रवाई करते हैं आप, उसको कर्म, शारीरिक कर्म कहते हैं। वो सारे कर्मों में ही ये शरीर फंसा रहता है, फंसा रहता है, फंसा रहता है, पता भी नहीं चलता है उसको। फटाक से कितने साल निकल गए, कर्म करते करते निकल गए बोलते हैं। पर आनंद प्राप्त किया, कोई बोले आनंद का अनुभव करते करते 50 साल बीत गए, कोई बोलता है ऐसे? क्या बोलते हैं, अपना कर्म करते करते 50 साल बीत गए। अर्थात फंसे रहे, फंसे रहे, फंसे रहे, और अभी भी फंसे ही है। वो भूंगा होता है ना फूल पे जो बैठता है, इसके पहले जो उदाहरण हुआ है हमारा, वो जो फूलों से मकरंद निकालता है, क्या कहते हैं उसको, भौरा। वो फूलों से क्या करता है, निकालता है। कभी कभी उसको इतनी टेस्ट आ जाती है, कमल के पुष्प में बैठता है, बड़ा आनंद आता है उसको, इंजॉय शरीर कर रहा है, शरीर इंजॉय करता है, शरीर को आनंद लगता है ऐसे। परंतु कितने समय का रहता है, क्षणिक रहता है। वो भूंग, वो भौरा मद को पीते रहता है, पीते रहता है, पीते रहता है, शाम हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है, और फूल पंखुड़ी बंद हो जाती है। कर्म करते रहा बोलता है, अरे मैं तो कर्म करता रहा शरीर के लिए, शरीर के लिए मैं कर्म करता रहा, आसक्त रहा, और ये आसक्ति कब मुझे धोखा दे गई पता भी नहीं चला, अभी तो बस कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे होता है, जो अज्ञानी या आसक्त लोग होते हैं, जो मुनि नहीं होते, भक्त नहीं होते, वो क्या करते हैं, वे इस प्रकार से उनके शरीर पूरी तरह से शरीर से संबंधित कर्मों में ही लगा रहता है, फंस जाता है उसमें, निकल नहीं पाता है, फंस जाता है। तो दूसरा है मन के आवेग और मन के भाव में उलझे रहते हैं। मन के आवेग और मन के भाव में उलझे रहते हैं नित्य। मन क्या कहता है, भाव क्या है, आवेग क्या है,
मन ये कहता है कि उसने ये किया, उसने वो किया, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी शरीर को सुख देना है, मुझे भी शरीर को सुख देना है, शरीर के संबंधित अच्छे से अच्छे कार्य जो है उस कार्य में मेरा शरीर लगाना है, जो सबसे अच्छा कार्य होगा उसमें मुझे मेरा शरीर लगाना है। इसका इसके प्रति मन आसक्त होते रहता है, भावुक होते रहता है, सोचते रहता है, थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते, विचार करते रहते, इसलिए फिर सोचते नहीं मुझे कर्म तो करना ही है, फंसना तो है ही, अब अच्छे से अच्छा कर्म करना है। अच्छे से अच्छा कर्म अर्थात अच्छे से अच्छी इंद्रिय तृप्ति कैसे कर सकते, बेस्ट पॉसिबल वे से इंद्रिय तृप्ति कैसे कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं करियर इंग्लिश में है कि नहीं, अच्छा करियर, अच्छा करियर, व्हाट डज इट मींस, उसका अर्थ क्या है, अच्छे से अच्छे इंद्रिय तृप्ति, बेस्ट फैसिलिटी और सेंस ग्रेटिफिकेशन, अच्छा करियर, और करते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट ये वो सब हो जाते हैं, अच्छा करियर प्राप्त करते, क्यों, क्योंकि मन उस प्रकार से उनको कॉम्पिटिटिव मोड में ले जाता है, कॉम्पिटिटिव मोड में जाता है, और कॉम्पिटिशन किस लिए करना है, अच्छी इंद्रिय तृप्ति के लिए, बेस्ट टाइप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करने। तो यह व्यक्ति जो इस प्रकार के मन के जंजाल में उलझते जाता है वह केवल वो अपने करियर का ही विषय सोचता है, कैरेक्टर का विषय नहीं सोचता है। डबल सी फॉर्मूला है आध्यात्मिक जीवन में, डबल सी, करियर प्लस कैरेक्टर। करियर आप बना सकते हैं आसान है, स्ट्रगल करके, मेहनत करके आसान है, जरूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा करियर किया अर्थात कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, नॉट नेसेसरी। कैरेक्टर अर्थात चरित्र, चरित्र संस्कृत का शब्द बहुत अच्छा है, चरित्र, चरित्र अर्थात मेरा सात्विक स्वभाव, मेरे सात्विक गुण, जिसमें मेरे वजह से समाज को, संसार को, देश को, राज्य को, गांव को और पूरे संसार को लाभ होगा, मेरे से क्या लाभ होगा, शांति मिलेगी, संसार में शांति प्रस्थापित करने के लिए मेरा कुछ योगदान होगा, यदि ऐसा कुछ है तो कहना चाहिए कि चरित्रवान व्यक्ति है। और वो कैसे हो सकता है, केवल भगवान के नाम का जप करने से, भगवान का स्मरण चिंतन करने से। तो कैरेक्टर भी हमको अच्छा, शुद्ध सात्विक अच्छा कैरेक्टर बनाना है तो हमको क्या करना है, भगवान का चिंतन स्मरण करना है। अब यह बात आप जाके कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, हम भी कॉलेज से पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बताइए कि क्या करियर कर रहे हो, थोड़ा कैरेक्टर का विचार करो, कोई सुनेगा? मैंने तो यह सुना है कि विदाउट स्मोकिंग नो वन कैन बिकम इंजीनियर, स्मोकिंग किए बिना कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, ऐसा हमने सुना था हमारे समय के लोगों को। अभी थोड़ा एडवांस हो गया होगा क्योंकि मैं ये 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं, अभी विदाउट ड्रिंकिंग एंड बिना ड्रिंकिंग के, बिना पार्टी के कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, इंजीनियरिंग क्या कुछ भी नहीं हो सकता, यह स्थिति हमारी इस दशा प्राप्त हो चुकी है। क्यों, क्योंकि और ऊपर से हम क्या बोलते हैं, करियर ओरिएंटेड। किसी ने यह कहा कि अरे वो मेरे परिचित है, बहुत करियर ओरिएंटेड है, तो यह अभिमान की बात है कि दुख की बात है, हा? कौन नहीं है करियर ओरिएंटेड, कुत्ता भी है करियर ओरिएंटेड, हाँ नहीं है, उसके करियर में परफेक्ट है, सुबह शाम अपना खा पी के आराम कर, करियर परफेक्ट, परफेक्ट करियर है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इतना सब कुछ जो कर रहे हैं, काम धाम या जो भी है, सब करियर में जो हम लगे हैं, अल्टीमेटली किस लिए? तो सब कुछ करके अल्टीमेटली खाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम कर्म करके धन एकत्रित करते हैं और धन से अन्न धान्य खरीदते हैं और खाते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे से तो ज्यादा इंटेलिजेंट कुत्ते हैं, क्योंकि पेट पालने के लिए वो कर्म करके धन क्यों एकत्रित करेंगे, सीधा ही खाओ ना। अर्थात हमको अन्न चाहिए ना, सीधा एक दो एकड़ जमीन में, दो एकड़ जमीन, दो गाय और एक झोपड़ी, एक घर छोटा सा, एक व्यक्ति के लिए इतना काफी है। यदि देखा जाए प्रभुपाद जी की व्याख्या जो है, एक घर, दो गाय और दो एकड़ खेत, अल्टीमेटली होगा क्या, उसमें से दूध दही मिलेगा, गाय गो माता दूध दही देती है, जमीन से आपको अन्न मिलेगा, रहने के लिए आपका घर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जानवरों को भी इतना समझता है, वो सीधे सीधे जिस चीज की आवश्यकता है उसको प्राप्त करता है। हम क्या करते हैं, खेत को निग्लेक्ट कर देते हैं, जमीन को, खेत को हम दूर कर देते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते उसके ऊपर। आजकल पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है सब जगह, खेत किसान ये किसी को नहीं चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे अन्न मिलता है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, उसमें काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं, अन्न पाने के लिए, और फिर वो धन एकत्रित करके वो धन से हम अन्न पाते हैं। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं प्रश्न, कौन इंटेलिजेंट है, प्राणी इंटेलिजेंट है कि मनुष्य इंटेलिजेंट है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मनुष्य इंटेलिजेंट होगा तभी यदि वो ये सब कार्यकलाप करता है, इंडस्ट्रीज में काम करता है, ये करता है, वो करता है, सब करता है, यह करते वक्त यदि वो अपना कैरेक्टर बढ़ाता है, अपना चरित्र का विकास करता है, चरित्रशील बन जाता है, तभी वो अंतर रख सकता है। तभी समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के मन में आवेग नहीं है, इस व्यक्ति का मन इसको उलझा नहीं रहा है, अन्यथा जो अज्ञानी, यहां दो लोगों की बात हो रही है, विषय क्या है समझ में है, ध्यान है ना, विषय ये है, दो प्रकार के लोग है, एक है मुनि और एक है आसक्त लोग। मुनि अर्थात भक्त, ऐसा समझिए भक्त और अभक्त, थोड़ी समझिए। तो भक्त आनंद का अनुभव करते हैं, अभक्त इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि करियर ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड होने से वो अपने शरीर में ही फंसते रहते हैं, शरीर से जो कर्म करते हैं उन कर्मों के एक्शन रिएक्शन में ही फंसे रहते हैं, और फिर वो मन, उनका मन उनको उलझाते रहता है। मन को एक विचार आने दो, मन में एक विचार कोई डाल दिया, अभी रास्ते से जा रहे, कोई फटाक से बोल दिया, क्या बोल दिया, महावीर नगर में आपका क्लास, हाँ महावीर नगर में भगवद गीता सत्संग 7 बजे है, 7 बजे। अरे एग्जैक्टली वो स्कूल के सामने जो ग्राउंड है ना, बहुत बड़ा, एकदम जोरदार गरबा चल रहा है। मन में क्या कर दिया, एक पिल्लू छोड़ दिया। मन में एक विचार डाल दिया, अब क्या हो रहा है, वहां से वो ग्राउंड से लेकर तो यहां तक आ तो रहे, लेकिन सत्संग तो एवरी फ्राइडे होता है, गरबा थोड़ी एवरी फ्राइडे होता है। एक विचार, अब ये विचार से दूसरा विचार, तीसरा विचार, चौथा विचार, 50 विचार, 100 विचार, अब क्या हो गया, मन जो है, मन ने इसको उलझा दिया है, एकदम गेट तक आया और फिर बोला नहीं, बैक टू ग्राउंड, गरबा, बैक टू गरबा। क्योंकि मन उलझा हुआ है, आसक्त है, तो शरीर
कर्मों में फंसा हुआ है, मन आवेग और भावुकता में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। अब बुद्धि, बुद्धि का काम क्या है? नियोजन करना, प्लान, आइडियाज एंड प्लान, कल्पनाएं होती हैं और उसके ऊपर नियोजन किया जाता है, प्लानिंग, दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस इज। नियोजन करती है, सोचती है क्या सही क्या गलत है और मेरे पास ये कर्म करना है, अच्छा 8 दिन बाद मुझे क्या करना होगा, 8 दिन पश्चात मुझे ये प्राप्त करना है, 1 महीने पश्चात वो प्राप्त करना है, 2 महीने पश्चात वो, ऐसे प्लान्स प्लान्स एंड प्लान्स। बुद्धि का काम क्या है? तो इस व्यक्ति की बुद्धि जो है प्लान्स और आइडियाज के बोझ तले दबी रहती है, नित्य प्लानिंग, एवरीडे प्लानिंग, प्लानिंग 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 से एग्जॉस्ट हो जाता, थक जाता है, है? क्योंकि उसके ऊपर इतना बोझ दबा डाल दिया है प्लानिंग का और अनेक प्रकार के आइडियाज का, हर क्षण उसके पास प्लान है, अच्छा ये करेंगे, अच्छा ये करेंगे, कैसा करेंगे, अच्छा उसके पास तो वो है, अरे मैंने अभी कार लिया, अरे उसके पास तो मर्सिडीज है, प्लानिंग प्लानिंग, अच्छा कार का हो गया, हाँ मैंने महावीर नगर में एक फ्लैट लिया है, अभी 4 दिन पहले लिया है, अच्छा तुरंत दूसरा कोई मिल जाए, अच्छा उसने तो बहुत बढ़िया नेपियंसी रोड पे फ्लैट लिया, अच्छा प्लानिंग, मुझे नेपियंसी प्लानिंग, वो प्लान चल रहा है, ये प्लान चल रहा है, वो प्लान चल रहा है, घर में जाना है, घर पे हमके लिए उसके लिए ये करना है, उसके लिए प्लानिंग 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 प्लानिंग, इतना बोझ हो चुका है बुद्धि के ऊपर प्लानिंग करते करते कि वो व्यक्ति ये प्लानिंग और इस प्रकार के आइडियाज के बोझ तले दब गया है। अब करता क्या है, केवल प्लानिंग ही करते रहता है। विजन क्या है आपको याद है? विजन विदाउट एक्शन इज इक्वल टू ड्रीम। प्लानिंग ये चाहिए करना है, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, लेकिन एक्शन नहीं करते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। वो क्या है? वो ड्रीम है, सपने जैसा है, वो प्लानिंग ही प्लानिंग, इतने बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं। कहते हैं ना भाई, विचार से और प्लानिंग से तो व्यक्ति हाथी भी खरीद सकता है। हाँ प्लानिंग करने को क्या जा रहा है भाई, हाथी खरीद लिया, हाँ राज एक आधा राजमहल खरीद लिया, प्लानिंग मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ताजमहल खरीदने का, रोज प्लानिंग करता हूँ उठते से रात को सोते तक, ताजमहल खरीदना है 10 साल में, प्लानिंग कर रहा हूँ, विजन, लेकिन नो एप्रोप्रिएट एक्शन। प्लानिंग के साथ एक्शन नहीं हो रही है, प्लानिंग के साथ एक्शन नहीं हो रही है। काउंसिलिंग में आना है, महीने में 2 सैटरडे काउंसिलिंग होता है, या सत्संग में आना है, प्लानिंग है, प्लानिंग है, फेस्टिवल्स में आना है, प्लानिंग है, वापी की यात्रा 2 महीने पहले बताया था, हाँ प्लानिंग है, आने का प्लानिंग है ना। प्लानिंग है, विजन है, केवल दूरदृष्टि है, उसके साथ एक्शन लगी है। प्लानिंग के साथ यदि एक्शन नहीं होती है तो वो सपने के जैसा है, वो क्या है? सपने। विजन विदाउट एक्शन इज ड्रीम, और एक्शन विदाउट विजन, अच्छा वहां कार्यक्रम हो रहा है, चलो 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 कार्यक्रम हो रहा है, बढ़िया चलो, अरे क्या हो रहा है कार्यक्रम, जब गए वहां पे बैठे तो पता चला क्या हो रहा था वहां पे, तो जब गए, जब किसी ने बोला वहां कार्यक्रम हो रहा है, गए जाने के बाद पता चला कि यहां पे विद्या नहीं अविद्या सिखाई जा रही है, और बाद में पता चला, पहले विचार नहीं किया, एक्शन ले लिया सीधा, हाँ सीधा एक्शन ले लिया, डायरेक्ट एक्शन ले लिया, सोच विचार नहीं। तो सोच विचार नहीं हो, न होते हुए एक्शन लेना, वो तो क्या है, नाइटमेयर है। ड्रीम से भी भयंकर नाइटमेयर, नाइटमेयर अर्थात डरावना सपना ना, डरावना सपना। वो तो पहला तो केवल सपना था, ये तो डरावना सपना है। एक्शन विदाउट विजन प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, प्रॉपर विजन, प्रॉपर विजन अर्थात सत्य बात, सत्य पे आधारित, वो क्या है, वो है भगवद गीता। तो जो अज्ञानी लोग होते, आसक्त लोग होते हैं, इस प्रकार से उनका शरीर कर्मों में, कर्मों के जाल में फंसा रहता है, मन अनेक प्रकार की आसक्तियों में, अनेक प्रकार की विचारों में उलझा हुआ रहता है, करियर 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 करियर, नो कैरेक्टर, उलझते जाता है करियर में, इसलिए कैरेक्टर बनाने का चांस ही नहीं मिलता है। आज के 10 साल बाद क्या होगा वो भगवान जाने। जो यंग जनरेशन है आज करियर ओरिएंटेड है, कैरेक्टर ओरिएंटेड है कोई, कोई किसी को कैरेक्टर से क्या लेना देना है, करियर बनाओ ऐसा बोलते हैं इसी, नो कैरेक्टर। तो मन जो है इस प्रकार से उलझा हुआ है, और बुद्धि, हाँ बुद्धि, ये आइडियाज, ये कल्पनाएं और प्लानिंग्स, इसके बोझ तले दबी हुई, और इसलिए वो व्यक्ति क्या है, आसक्त है, मुनि नहीं बन सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इन सभी से हमको छुट्टी मिल सकती है, इन सभी भयंकर बातों से हम फ्री हो सकते हैं, लेकिन कब, उसके लिए भक्त होना पड़ेगा। भक्त क्या करते हैं, भक्त आनंद का अनुभव करते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं, अर्थात उनका शरीर मन और बुद्धि तीनों कैसे हैं, स्थिर है, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति, उनकी चर्चा हो रही है। तो ये बेसिक अंतर, बेसिक डिफरेंस है, मूलभूत अंतर, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। क्या है मूलभूत अंतर, इनका शरीर मन और बुद्धि सभी के सभी कैसे हैं, फंसे हुए हैं, इसलिए आ सकते। देखिए यह बोल के तिरस्कार नहीं करना चाहिए संसार का, हम बोलेंगे हम तो जप करते हैं 16 माला जप, कोई हमको मिल गया ऐसा आ सकते अज्ञानी है, है? अज्ञानी आ सकते, इनसे बात नहीं करो, भगाओ इनको यहां से। ये भक्त का प्रवृत्ति होना चाहिए क्या, जीव दया, वैष्णव सेवा, जीव दया और कृष्ण नाम, ये पहले तीन बातें सबसे पहले हमने बताया। ऐसे नहीं होना चाहिए कि संसार है क्या, ये तो कर्मी है, इससे क्या बात करेगा, मूर्ख है, हटाओ इसको यहां से, हम तो भक्त है भाई, हम तो मुनि है, हम तो आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन भक्त का या मुनि का लक्षण क्या होता है, जिस आनंद का वो अनुभव ले रहा है उसी आनंद का अनुभव दूसरे को भी मिले, दूसरे को भी वो प्राप्त हो। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि ये तो दूसरे लोग तो आसक्त है, ऐसे है वैसे, नहीं, हम भी थे, हम भी है, अभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम तो एकदम मुनि है, हम प्रोग्रेस, प्रयास कर रहे हैं, जारी है और प्रयास जारी रहेगा जब तक वो मुनि नहीं बनते, है कि नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हमको यह सोचना चाहिए कि ये लोग जो होते आसक्त या अज्ञानी, वो क्यों दुख का अनुभव करते हैं, अपने जीवन में दुखी क्यों रहते हैं, या आवेग के चक्र में भयंकर स्वभाव क्यों हो जाता है उनका, इस प्रकार का दुख से वो त्रस्त क्यों रहते हैं, क्या कारण है। कोई व्यक्ति आसक्त है, अज्ञानी है, भक्त ने क्या सोचना चाहिए, ऐसा क्यों है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। बेसिक यदि आप देखें, उसका मूल कारण यदि सोचने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि ये इस प्रकार से इसका शरीर मन और बुद्धि व्यस्त है, उसका शरीर मन और बुद्धि व्यस्त है ना, आपने अभी देखा शरीर कर्मों में व्यस्त है, मन अनेक प्रकार के आवेगों में व्यस्त है, बुद्धि तो बोझ तले फंस गई है। तो ये इतने प्रकार की व्यस्तता उसके जीवन को दुखी करती है प्रभु जी। तो इतने प्रकार की व्यस्तताओं के कारण उसका जीवन दुखी है, यह यदि हम बात समझेंगे तो हम उसको यह बात बताएंगे कि इतने प्रकार से आप जो व्यस्त है, थोड़ा व्यस्तता क्या करो, कम करो। ऐसे हम बताते हैं, आइए सत्संग में, आइए आइए आइए, नहीं आते क्योंकि शरीर को आदत लग चुकी है। परंतु धीरे धीरे उनको बताएंगे तो अपने आप उनका दुख कम होगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रयास करना, क्योंकि हमने जो पाया वो संसार को हमको देना है। फिर ये जो जीवन है, इसमें जो श्लोक में बताया गया है क्या है, पहला ही अक्षर जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है। तो मुनियों को एक्चुअली इस प्रकार का जीवन जो है मुनियों के लिए, वो क्या है, रात्रि के समान, अंधकार के समान नहीं? इस प्रकार का जीवन, किस प्रकार का जीवन, शरीर कर्मों में फंसे रहना, मन आवेगों में उलझ जाना, और बुद्धि प्लानिंग और आइडियाज में दबी रहना, इस प्रकार का जीवन अर्थात मुनियों के लिए अंधकार के समान है, अज्ञान के समान है, या अंधकार है। इसलिए क्या कहते हैं मुनियों के लिए, जो पहला कहा गया उसमें श्लोक में जो कहते हैं कि जो बाकी संसार के लिए दिन है वो मुनियों के लिए रात्रि है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बाकी संसार के लिए दिन क्यों है, क्योंकि वो उसी में रह के सोच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं भाई, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, जो कि क्या है, पर किसके लिए, जो मुनि है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो भक्त है, उसके लिए वो अंधकार इस प्रकार से रात्रि के जैसा है। तो यह दो जगत की बात हो रही है, एक अंधकारमय जगत और एक तेजोमय जगत है। कितने प्रकार की बात हो रही है, दो प्रकार की बात हो रही है, एक अंधकारमय जगत और एक। तो मुनि के कार्य जो होते हैं वो भौतिकता में लीन व्यक्ति के लिए रात्रि के समान होते हैं। मुनियों के जो कार्य है, मुनियों का जो कार्यकलाप है, भक्तों का जो कार्यकलाप है, वो अज्ञानी लोगों के लिए क्या है, रात्रि के समान। क्यों क्यों, क्या कारण हो सकता है? जो मुनियों का आनंद वास्तविक आनंद है, या जो कार्यकलाप है मुनियों का, स्मरण चिंतन, उसका मुनियों का जो कार्यकलाप है वो कार्यकलाप बाकी लोगों के लिए अंधकार है, अज्ञान है। क्यों? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत महत्व का श्लोक। हाँ, वो ये सोचते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार के प्रति वो लोग सोए रहे। आत्म साक्षात्कार के प्रति वो लोग सोए रहते हैं, और मुनि लोग किसके प्रति सोए रहते हैं, अज्ञानता के प्रति सोए रहते हैं। मुनि लोगों के लिए भी रात्र है, और संसारिक लोगों के लिए, आसक्त लोगों के लिए भी रात्र है, परंतु आसक्त जो लोग रहते हैं वो आत्म साक्षात्कार के विषय में सोते रहते हैं, और मुनि जो होते हैं वो अज्ञानता के विषय में सोते। जब अज्ञान आता है वो सो जाता है, यहाँ अज्ञान है, सो जाओ बन सब। और अज्ञान दिन में होता है, क्योंकि दिन में ये सारे लोग कार्यकलाप करते हैं। ऐसा इस श्लोक में भगवान बता रहे अर्जुन को कि मुनि के जो कार्य होते हैं वो कार्य भौतिकता में लीन व्यक्ति के लिए अंधकार में लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के प्रति सोता रहता है, सोया रहता है ना। तो ये जो हो गया अंधकार में जगत। अब संसार की यदि बात करें, संपूर्ण इस पृथ्वी लोक की बात करें संसार की, तो हमको यह समझ में आ सकता है कि सारे संसार में ज्यादातर लोग अंधकार में जगत में रहते नहीं। जब विदेश में जब लोग यह देखते कि हरे कृष्ण भक्तगण जो है किसी भी प्रकार की नशा नहीं करते, किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करते, किसी भी प्रकार का सट्टा या गैम्बलिंग नहीं करते, कोई भी मांसाहार नहीं करते, जब इस प्रकार से विदेशों में लोग सोचते हैं हरे कृष्ण भक्तों के प्रति, तो वो ये सोचते कि अरे 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 इनको तो कोई सुख नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट हैप्पी, बेचारे नशा नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते बेचारे, सट्टा भी नहीं करते, गैम्बलिंग भी नहीं करते बेचारे। हाँ अभी भारत ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है बस। भारत में भी ऐसे ही सोचते हैं। अभी भारत में तो चाय के बारे में प्रचलित है, चाय के विषय में बोले चाय नहीं पीते तो उनको लगता है कि ऐसे क्या बेचारा ये काले पानी की सजा भोग रहा है। चाय नहीं पीता है बोले तो काले पानी की सजा है। वास्तव में काले पानी की सजा है, चाय क्या होता है, काला ही पानी है। तो लोग इस प्रकार से सोचते हैं। इतना ही नहीं, कुछ वर्षों पहले रशियन सरकार ने क्या किया था पता है? नहीं, उसके भी बहुत पहले रशियन सरकार ने हरे कृष्ण भक्तों के इस कार्य को कानूनी अपराध ऐसा एक कायदा बना दिया। दिस इलीगल, कानूनी अपराध है ये। मांसाहार नहीं करते, ये लोग कहते हैं मांसाहार नहीं करते, इसका अर्थ ये है कि ये लोग शारीरिक दृष्टिया कमजोर, लोगों को कमजोर बना। दारू नशा नहीं करते तो मेंटल डिप्रेशन आवश्यक है नशा करना, तो ये कानून बना दिया। आप सोच सकते हैं ये जो बात भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्मज्ञान का विषय है वो संसार में आसक्त लोगों के लिए क्या है, रात्रि समान है। अर्थात उनको ये अंधकार लग रहा है, रशियन गवर्नमेंट को ये अंधकार लग रहा है आत्म साक्षात्कार और शुद्धता का जीवन। बाद में वो सब उसके ऊपर हुआ, जो भी हुआ केसेस में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस प्रकार से इस प्रकार से वो लोग सोचते हैं कि ये मुनि का कार्य जो होता है, ये जो सत्य का कार्य, जो सात्विक कार्य, वो क्या है, अंधकार, क्योंकि वो स्वयं सांसारिक बातों में आसक्त है। ये बहुत बड़ी दुर्दशा इस मानव समाज की संपूर्ण। फिर दूसरी बात है तस्याम जागृति संयमी, अर्थात उसमें आत्म संयम पुरुष जगता है। तात्पर्य में आप पूरा ये पढ़ते हैं तात्पर्य, तो जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी को जागने का समय है। सभी के लिए जो रात्रि वो आत्म संयमी को जागने का समय है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं अभी ध्यान से पढ़े हैं तो, आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादियों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोता रहता है। गोपाल जी लिखते हैं आत्म संयमी व्यक्ति जगते रहता है कब, जब ये लोग सोते रहते हैं। और ये लोग कब सोते रहते हैं, आत्म साक्षात्कार के विषय में सोते रहते हैं। और आत्म साक्षात्कार के विषय में जब ये सोते रहते उसी में मुनि क्या करता है, प्रगति करता है, जागते रहता है और आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा उन्नति करता है। उसी में आप देखते हैं चैतन्य चरितामृत श्रीवास पंडित, श्रीवास पंडित के घर पे कीर्तन हुआ करता था, है ना, श्रीवास संगम, श्रीवास अंगन में कीर्तन होता था। और कब करते थे वो कीर्तन? रात्रि के समय वो कीर्तन करते थे जब सारा संसार सोता था, और उस कीर्तन में सारे भक्त बड़ा आनंद लेते थे, बहुत आनंद का उनको, आनंद का अनुभव उनको होता था। संध्या होते से ही, संध्या समय हो गया, संध्या होते से ही सारे भक्त धीरे 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 शिवा संगम में एकत्रित होते धीरे धीरे, और करते करते काफी कुछ भक्तों की भीड़ वहां पे हो जाती थी। और उस समय मुकुंद दास, मुकुंद महाशय बहुत ही सुंदर तरीके से शास्त्रों के श्लोकों का रिसाइटेशन, शास्त्रों में के श्लोक गाते थे। और जब वो श्लोक गाते थे उस समय चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो जाते थे उनकी उस श्लोक गायन से, श्लोक के गायन से भगवान साक्षात भाव विभोर होते थे। पूरे अष्टकालीन जो भाव प्रकट होना चाहिए वो पूरे अष्टकालीन सारे भाव उनके शरीर में प्रकट होते थे, हास्य कंप रुदन मूर्छित हो जाते थे, हास्य उदन सारे भाव उनमें पुलकित हो जाते थे, कभी स्वेद हो जाते थे। किससे? जब वो रिसाइट केवल श्लोक पढ़ते थे मुकुंद दास, वो पढ़ने वाले का भी भाव देखिए कितना शुद्ध हो, कितना समझ के वो पढ़ते थे। और जब इस प्रकार से जब महाप्रभु भाव विभोर हो जाते तो इतना सुंदर नृत्य करते थे और जोर जोर से बोलते थे हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, करते 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 चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। और उनका वो हरी बोल जब वो चैतन्य महाप्रभु बोलते वहां पे एकत्रित सारे भक्तगण जो उनके साथ नृत्य में मग्न रहते उनके सारे दुख दूर हो जाते, सारे प्रकार के आवेग, सारे प्रकार के कष्ट, सारे प्रकार के दुख वो भक्तों को क्षण में दूर हो जाते थे महाप्रभु के ओर जब वो देखते कि नृत्य करते वक्त इतना सुंदर नृत्य महाप्रभु करते थे। और अब यहां पे देखिए जो पड़ोसी अड़ोसी जो पाखंडी लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग बोलते थे ये पागल हो गए, इनको वायु रोग हो गया। वात जब आदमी को बढ़ जाता है ना तो वैसे कभी बहुत नाचता है तो कभी बहुत सोता है तो चिल्लाता है, तो क्या बोलते थे पाखंडी लोग, इनको वात की बीमारी लग गई, आपको ठंडी लग रही थी बंद कर दीजिए, बंद करना है क्या, बंद करना। तो पाखंडी लोग इनके लिए क्या बोलते थे, अरे क्या है हमको त्रस्त कर रहे, रात हो गई, रात्रि का समय है, हमको सोने नहीं दे रहे हैं। हाँ, इन लोगों को वायु दोष हो गया है, वात इंबैलेंस हो गया है, इनका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसे बोल देते हैं। कौन? जो पाखंडी हुआ करते आ सकते इंसान। और उसी समय ये भक्तगण बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान चैतन्य के साथ नृत्य करते थे रात्रि के समय जब सारा संसार सोता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम बनाई है इस कौन में, कौन सी सिस्टम है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, साढ़े चार से दो घंटे का जो समय होता है सूर्योदय तक का समय, वो क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो प्रभुपाद जी कहते इस समय भक्तगण क्या करते, साढ़े तीन बजे उठ जाते अपना स्नान स्नान वगैरह सब करके तैयार होके साढ़े चार सवा चार या साढ़े चार बजे, कहीं साढ़े चार बजे आरती होती है कहीं सवा चार बजे, तो बराबर साढ़े चार बजे भक्तगण एकत्रित होकर मंगल आरती करते अपना जप करते, भले अपने घर में करते हो पर उसी समय बराबर साढ़े तीन बजे ये नाइट क्लब में जाने वाले लोग रात भर जागते हैं और साढ़े तीन बजे। प्रभुपाद जी ने इसलिए सिस्टम बनाया कि ये भक्तगण जो है इस समय जागते हैं क्योंकि वो ज्ञानी है, उनको आनंद का अनुभव करना है, भगवान के प्रेमी है, भगवान के नाम में उनकी रुचि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और बहुत ही महत्व की घटना जो रात्रि के समय हुई है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? रात को 12 बजे। और उस समय सारे राक्षस सो रहे थे। कंस ने सारे राक्षसों को तैनात करके रख दिया था, जो मायावी राक्षस है उनको भी तैनात रख दिया था, किसी से भूल चूक से दिख गया लेकिन वो सो भगवान के, तब तक जाग रहे थे। भगवान का आते से ही, भगवान का आगमन होते से ही वो सो गए। अर्थात जो इस प्रकार से पाखंडी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो भगवान के आने पर अर्थात भगवान के नाम के लिए, भगवान के लिए या आध्यात्मिक कार्यों के प्रति सोते रहते अर्थात अज्ञानी, अर्थात उसमें रुचि नहीं है। आप कितना भी अज्ञानी लोगों के पास जाके हरे कृष्ण महामंत्र का महात्म्य बताइए, परंतु वो क्या है? सो गया। आप बताते जाए उसके भेजे में कुछ उतरेगा ही नहीं, जो पिंड में ही नहीं है वो आएगा कहां से? उसके पिंड में वो है ही नहीं, है कि नहीं? पिंडी ते ब्रह्मांडी बोलते हैं, ब्रह्मांड का अर्थ अपने अर्ध गृह के संसार में, पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो पिंड में होगा वही तो ब्रह्मांड में दिखेगा। पिंड में क्या है? पिंड में अज्ञान है भरा पड़ा, तो ब्रह्मांड में क्या दिखेगा? सारी माया ही दिखेगी। जैसे ही भगवान दिखे क्या हो जाएगा? नींद आ जाएगी। कथा चल रही है, नींद आ जाएगी। हरे कृष्ण महामंत्र का 64 माला का जप का प्रयोजन है, नींद आ जाएगी। विशेषकर भागवत क्लास सुबह का है, नींद आ जाएगी। सोते रहते हैं। तो भगवान का आगमन होते से सोने की जो प्रवृत्ति है, भगवान का आगमन अर्थात कथा हो, श्रवण हो, उनके नाम का जप हो, नींद आना अर्थात ये कौन सी प्रवृत्ति है? कंस के, कंस को स्वयं भी ऐसे ही हुआ था। कंस भी जागता था रात रात अपने महल में, लेकिन उस दिन वो भी सो गया भगवान के आगमन से। लेकिन दो महाशय जाग रहे थे, दो मुनि जाग रहे थे, वसुदेव और देवकी, वो जाग रहे थे। और जब भगवान का आगमन हुआ, उन्हें सुंदर भगवान का दर्शन किया और प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए, भाव विभोर हो गए, उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम था और बढ़ गया। इतना सुंदर रूप भगवान का देखकर भगवान के प्रति प्रेम उमड़ गया, बढ़ गया। भगवान का सुंदर रूप देखते से हमारे हृदय में भी भगवान का प्रेम बढ़ना चाहिए। मंदिर में दर्शन के तो लिए जाते हैं, दर्शन तो करते हैं, लेकिन कैसे? मैं रोज मंदिर में दर्शन के लिए जाता हूं, बस। क्या करता हूं? रोज मंदिर में दर्शन के लिए जाता हूं, ये मेरा नियम है। मेरा क्या है? नियम है। गया मंदिर में भगवान का, अरे 10 मिनट भागे भागे गए, फटाक 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 फटाक, वो आर्मी ऑफिसर करते हैं ना सैल्यूट, कभी वो फटाफट फटाफट सैल्यूट मारते, कभी लोटांगन ले लेते हैं, निकल आते। दर्शन हो गया मेरे, नियम का, भगवान के प्रति प्रेम भाव बढ़ा, किसके प्रति प्रेम बढ़ा? नियम के प्रति प्रेम। प्रेम किसके प्रति बढ़ना चाहिए? भगवान के प्रति। लेकिन हमारा प्रेम किसके प्रति बढ़ता है? नियम। मैं ये नियम का पालन कर रहा हूं। नियम कल और मैं आपको दिखाऊंगा, एक और नियम इसमें ऐड करूंगा, आपको दिखाऊंगा दूसरे नियम का पालन। लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ बदलाव हुआ। हजारों कथाएं सुनी, जितने भी भागवतम की कथाएं सारी सुनी, और जहां भी कथा होती है मैं सुनने के लिए जाता हूं। जितने भी भगवदगीता के क्लास होते हैं सारे सुने, कई बार भगवदगीता सुनी। जब भी भगवदगीता का क्लास होता है मैं वहां चला जाता हूं। नियम है, नियम से जाता हूं। फल क्या प्राप्त हुआ? जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? हर साल 4-10 कथा सुनते थे, इस साल 20 सुन रहे हैं, लेकिन फर्क क्या हुआ? कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं हम टीवी पे भी कथा सुनते हैं। हम कहते हैं आप 24 घंटे कथा सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है, सत्संग करो। लेकिन जीवन में कुछ बदलाव हुआ, कुछ भगवान के प्रति आसक्ति जो है उसमें बढ़ोतरी हुई। इसका पता कैसे चलेगा? भगवान के विग्रह का दर्शन करके, भगवान का दर्शन करके हमारे अंदर क्या भाव जागृत होता है। कई बार कई भक्त हमको पर्सनली कहे, बहुत पर्सनल प्रश्न पूछे भक्त कभी कि कभी कभी प्रभु जी ऐसे होता है मंदिर में गए ना, जल्दी दर्शन करके निकल जाएंगे, ऐसा भाव होता है। बहुत बार होता है ऐसा भाव, बहुत बार जल्दी दर्शन करके निकल। दर्शन तो करना है परंतु कैसे? दूसरे काम में जल्दी निकल जाएंगे, मंदिर में आए जल्दी निकल जाएंगे। यह भाव क्यों आता है? क्योंकि नियमों से बंधे हुए हैं। नियमों से ज्यादा बंधे हुए, भगवान से कम बंधे हुए। नियम पालन जरूरी है, भगवान के प्रेम में बढ़ोतरी होना वो जरूरी नहीं। वो होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा ना प्रभु जी, क्या है भाई क्या जल्दीबाजी। तो यह जो होता है यह नहीं होना चाहिए। जैसे वसुदेव और देवकी ने जैसे ही भगवान को देखा वो पुलकित हो गए, एकदम भगवान की स्तुति करने लगे। आप श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद पढ़ सकते हैं, कितनी बड़ी स्तुति है भगवान की, इतनी स्तुति की। और फिर देवकी कहती है, बड़े दुख के साथ कहती कि हे भगवान, मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है। आनंद तो बहुत है क्योंकि आप साक्षात अवतरित हुए हैं, बहुत आनंद है। लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी जो ये अवतार लीला है, आपका जो आविर्भाव है, उस आविर्भाव को अर्थात आपके जन्म को मैं मना नहीं पाती हूं, उसका महोत्सव नहीं कर पा रही हूं क्योंकि जेल में हूं। बहुत दुख है इस बात से, परंतु ही मैं इस प्रकार से वचन वाणी कहती हूं जो कि सत्य हो जाएगी। मैं इस प्रकार से कहती हूं वाणी, मेरी यह वाणी है, मेरी यह इच्छा है कि आने वाले युग में, विशेषकर आने वाला युग कलयुग ही है, कलयुग में आपका जन्म रात्रि के 12 बजे अष्टमी के दिन सारा संसार बड़ी धूमधाम से मनाएगा क्योंकि मैं मना नहीं पाई, लेकिन ये युगों तक मनाया जाएगा, कलयुग में भी मनाएगा। और इसलिए क्या करते हैं हम आज भी रात को 12 बजे धूमधाम से गोपाल जी की कृपा से सारे संसार में, पूरे संसार में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जापान, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह, मुस्लिम कंट्री में भी मनाया जाता है। तो यह भी जन्म जब मनाया जाता है तो जो भक्त होते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते, अनासक्त होते, वो उस दिन भगवान की सेवा में और भगवान का वास्तविक दर्शन करना चाहते हैं, जैसा दर्शन वसुदेव और देवकी ने किया। तो वो दर्शन हमको चाहिए, भगवान के उस दर्शन को प्राप्त करके अपने प्रेम का स्तर बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए।
ना कि केवल नियमों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। नियम पालन करना गलत नहीं है, नियम के साथ आसक्त होना गलत है। नियम किस लिए है? नियम तो साधन है, साध्य क्या है? साध्य क्या है? साध्य भगवान है, भगवान का प्रेम है, वो हमारा साध्य है। हमको दिल्ली जाना है, ट्रेन से बैठ के जाना है, हमारा साध्य दिल्ली है। ट्रेन बहुत अच्छी है, एसी एकदम, बहुत अच्छी सीट है, बहुत अच्छी सर्विस है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अभी मैं इसमें बैठ जाता हूँ। दिल्ली में क्या है धरा हुआ, कितना गंदा शहर है, ये ट्रेन कितनी साफ सुथरी है, मुझे दिल्ली पहुंचा, मैं इसी में बैठा रहा। उद्देश्य प्राप्त होगा, साधन के ही चक्र में फंस गए। साधन के चक्र में फंसना नहीं चाहिए, वो साधन है। नियम साधन है, साध्य है कृष्ण प्रेम। नियम पालन है, रोज दर्शन करना या जो भी करते हैं नियम से करते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम कितना प्राप्त हो रहा है इसके विषय में हम कॉन्शियस रहना चाहिए। इसके विषय में हम हमेशा अपने आप को पूछते रहना चाहिए। यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें समस्त प्राणी जागते। इंद्रिय तृप्ति का जीवन सामान्य लोगों के लिए दिन के समान है। सामान्य लोग इंद्रिय तृप्ति के जीवन को ही तेज मानते हैं, प्रकाश मानते हैं, अंधकार नहीं मानते हैं। जिनके जिसके लिए वे लोग कठोर परिश्रम करते हैं, है ना? जो जिस दिन भर क्या करते हैं, वो लोग कठोर परिश्रम करते हैं। वास्तव में यह जीवन रात्रि के समान है, जिसमें भौतिकवादी लोग इंद्रिय तृप्ति के स्वप्न देखते हैं। जो भौतिकवादी लोग हैं, वो जीवन दिन भर क्या करते हैं, अपना शरीर मन और बुद्धि इस प्रकार से व्यस्त रखते हैं ना। शरीर कर्मों में व्यस्त रहता है, मन आवेगों में व्यस्त रहता है, बुद्धि दबाव में व्यस्त रहती है, व्यस्त रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और सोचते हैं कि इसी से मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी। तो यही कार्यकलाप से वो यह स्वप्न देखते रहते कि मुझे सुख मिलेगा, और इसलिए सारा संसार आपको भागते हुए नजर आता है। नहीं, कैसे नजर आता है? भागते हुए। कभी कोई भी स्टेशन पे जाके देखिए सुबह 8:30-9 बजे, ऐसा लगता है सारा संसार भाग रहा है। अरे पर हम कितने सालों से देख रहे हैं, भाग ही रहे हैं। अरे कुछ सुख का अनुभव किया है कि नहीं? कि भाग ही रहे, भाग ही रहे, भाग ही रहे। क्यों भाग रहा है ये संसार? क्यों? क्योंकि इसी के ये जो इंद्रिय इनके फंसे हुए, ये सोचते कि इसी पद्धति से, इसी तरीके से इनको एक दिन सुख प्राप्त होगा, सुख के स्वप्न देखते हैं। यह सबसे बड़ी परेशानी है। सुख के स्वप्न देखना गलत नहीं है, देख सकते हैं, लेकिन आधार क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। आधार जो है सुख प्राप्त करने का, वो वास्तविक होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वस्तु प्राप्त होता है, तो वस्तु प्राप्त होती है ऐसे लोगों को तो बड़ा हर्ष होता है, या जो भी उद्देश्य है, विशेषकर वस्तु ही रहती है। आसक्त लोगों के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होती है? कोई वस्तु प्राप्त करना। जब वस्तु प्राप्त होती है तो हर्ष होता है, और जब वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो दुख होता है। योग में हर्ष होता है और वियोग में दुख होता है। जब योग होता है तो वियोग होना ही है, जब योग होता है तो वियोग निश्चित है। मान लो हमको अभी एसी में रहने की आदत है, एसी के बिना काम नहीं चलेगा, और किसी कारणवश अमेरिका में जैसे एक बार ब्लैकआउट हुआ था, किसी कारणवश 2 घंटे के लिए लाइट चली गई, क्या होगा? हाँ, इतना दुख का अनुभव करेंगे अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि हमको पहले एसी प्राप्त हुआ, एसी का योग, एसी को एसी प्राप्त हुआ। जैसे ही प्राप्त हुआ एसी, हम कमजोर होना शुरू हो गए। इसलिए कहते भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में दुख है,
क्योंकि आगे जाके कभी ना कभी वो ऐसा दुख देगा जो टॉलरेबल, जो सहनशील नहीं होगा, उसके सहन नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। तो यहां पे यही है कि यह लोग व्यक्ति बहुत ही बड़े धोखे में रहते हैं। कैसे? वो सोचते हैं वस्तुओं से सुख मिलेगा, वस्तुओं से सुख नहीं मिल सकता है, लेकिन सोचते वस्तुओं से सुख मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम या निशा पश्चतो मुने। आखिरी का पंक्ति है, यह मुनि के लिए रात्रि है। ऐसे ये लोग सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये सब दिन है, अर्थात यह प्रगति है, यह प्रकाश है, ये तेज है, परंतु इसी को मुनिगण क्या सोचते हैं, ये अंधकार। कैसे सोचते हैं? भौतिकवादियों का इंद्रिय तृप्ति का जो जीवन में चाहे जितना भी रूप रंग से भरा पड़ा हुआ, भौतिकवादी आसक्त लोग बहुत सारे रूप रंगों से भरा पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्त जो है, भक्त जो है, मुनि जो है, वो क्या करते हैं, उनके लिए इस प्रकार का जीवन गौण, नॉट इंपॉर्टेंट, गौण। एक समय के एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, भारत के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, पूरे विश्व में उनका दबदबा था, उनको वो लंदन में थे, उनको पूछा गया कि आपको ये शहर कैसे लग रहा है। उन्होंने देखा बहुत सुंदर शरीर है, हम सॉरी बहुत सुंदर शहर है, मैं ये चाहता हूं इस प्रकार की यहां की जो इंद्रिय तृप्ति है, कितना सुंदर है, इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति मेरे प्रत्येक भारतीय को प्राप्त हो, इतना कितना सुंदर शहर है लंदन। उसके कुछ ही दिन पश्चात वहां पे प्रभुपाद जी गए। पत्रकार ने प्रभुपाद जी को सेम प्रश्न पूछा, आपको ये शहर कैसे लग रहा है लंदन? तो लंदन कैसे लग रहा है प्रभुपाद जी, शहर के बारे में आपको क्या लगता है? प्रभुपाद जी उत्तर, ये महातुच्छ शहर है। कि उनके लिए इंद्रिय तृप्ति प्रायोरिटी नहीं थी ना, ये महातुच्छ ये है शहर है, यहाँ केवल प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता है सब, और किसको भी देखो तो इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन है लोग, इनको कुछ हाइयर लेवल, ये तो जानवरों का जीवन जी रहे हैं, हमारे यहाँ तो मनुष्य का जीवन जिया जाता है। और कोई भी ज्ञानी व्यक्ति यही कहेगा कि मनुष्य जो है जानवरों से बेहतर है, उनकी समझ अच्छी होती है। तो प्रभुपाद जी कहे ये तो महातुच्छ शहर है, और वही वो पॉलिटिशियंस क्या कहे, ये तो बहुत जोरदार शहर है, मैं मेरे प्रत्येक भारतीयों को इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का सुख प्रदान करना चाहिए। तो ये शॉर्ट में उदाहरण के तौर पर यह समझ सकते कि मुनिगण ऐसे सोचते हैं और आसक्त या ज्ञानी इस प्रकार से सोचते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस श्लोक में एक विशेष शब्द है, वह पश्चतो। पश्चतो अर्थात देखने वाला, क्या देखने वाला, क्या देखने वाला, सभी बातों में नहीं, एक ही बात, हाँ, जो कृष्ण लोक और भौतिक लोक इसमें जो फर्क जानता है, वो कृष्ण लोक को भी देखता है और भौतिक लोक को भी देखता है, लेकिन फर्क जानता है। देखो उस फर्क को, देखो, प्रॉब्लम ये है कि उस फर्क को ही संसार नहीं देख रहा है। इस श्लोक का सार ये भगवान बोलना चाहते हैं कि उस फर्क को समझो, इसको आप वैकुंठ मत समझो। फरक को समझो, ये संसार, भौतिक संसार की आसक्ति और वो दिव्य संसार की आसक्ति, इसके इन आसक्ति में फरक समझो। वहां जाने से क्या होगा, उस प्रेम को प्राप्त करने से क्या होगा, और इसके प्रेम को प्राप्त करने से। पश्चतो देखने वाला, क्या देखने वाला, तो कृष्ण लोक और भौतिक लोक में फर्क देखने वाला। फिर कहते हैं मुनि, जिसका शब्द बार बार कहा गया है, जिसका एक छोटी सिंपल व्याख्या इसकी ऐसी कि जिसका मन भौतिक लोगों से भिन्न होता है, इस श्लोक के अनुसार व्याख्या, वो मुनि है। जिसका मन भौतिक लोगों के अर्थात भौतिक आसक्तियां उसमें नहीं रहती है, भौतिक लोगों से भिन्न रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है? उसी श्लोक में आगे की पंक्ति और एक थी, जो आप जो व्याख्या बताए हैं कि मन एक समय में एक ही जगह एक ही इंद्रिय विषय की ओर आकर्षित रहता है, लेकिन यह मन की बात हो रही थी उनकी जो भक्त नहीं है, उसी में बताया था, उसी श्लोक में बताया था 64-65 में बताया था कि जो भक्त होते हैं उनका मन एट ए टाइम, अर्जुन को जब महाबाहो बोला कृष्ण ने, क्यों महाबालो बाहो बताया था, विराट युद्ध का उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था विराट युद्ध का, कि एक ही समय अर्जुन ने अनेकों महारथियों को एक ही साथ हराया युद्ध में एक साथ। तो भगवान उनको यह स्मरण करवा रहे कि आप तो महाबाहो हो, आप तो भक्त हो, आप तो महाबाहो हो, आप तो महामनो उसको कह सकते हैं। महाबाहो का अर्थ दूसरा अर्थ क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसका मन एक ही समय अपने पांचों इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। वही थी ना ये बात, तभी तो महाबाहो का उसमें उल्लेख हुआ था। तो भक्त के पास वो आइडिया होती है, कैसे आइडिया होती है, क्योंकि मूलतः उसका मन जो है उसके मन को हायर टेस्ट लगी हुई रहती है। मेरी इंद्रिय मेरी त्वचा या मेरी जीवा कितना भी अच्छा बोले, रसगुल्ला बहुत अच्छा है चलो उधर, या पानी पूरी या वड़ा पाव या चाइनीज बहुत अच्छा है वो गाड़ी पे बहुत अच्छा है चलो वहां पे, लेकिन मेरी जीवा को जो है ना वो हायर टेस्ट लग चुकी है। उसी समय जीवा ये कह रही है और आ कह रही है कि बहुत सुंदर सिनेमा हॉल है उधर बाजू में, सिनेमा भी देख लेंगे, परंतु मेरे आंख ने दूसरा पिक्चर ऑलरेडी देखा, उसकी टेस्ट उसको आ चुकी है, उसने कृष्ण को राधा कृष्ण की लीला का स्मरण किया, उसने राधा कृष्ण के लीला का स्मरण विजुअलाइज उसका अनुभव किया, तो अनुभव किया है तो सिनेमा का क्या थिएटर देखेगा। कहने का अर्थ है भक्त को, भक्त का मन ऑलरेडी कृष्ण के चरणों में आसक्त हुआ हुआ रहता है, इसलिए एट ए टाइम ये पांचों इंद्रिय विषय उसके ऊपर आक्रमण भी करे ना तो ये मन किसी में इंटरेस्ट नहीं रखता है, फटाफट स्विच ऑफ करता है। ये उसी श्लोक में हुआ 64 या 65 महाबाहो का अर्थ बताते हैं। देखिए हम लोग खाते हैं है ना, खाते वक्त हम सांस रोक के काम खाते हैं क्या, फिर सांस भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, अर्थात मन से विचार भी करते हैं, कोई हमको एक हाथ कैसेट सुना रहा है तो वो सुनते भी हैं, मतलब खा रहे हैं सुन भी रहे हैं विचार भी कर रहे हैं सांस भी ले रहे हैं दृश्य देख भी रहे हैं। कई लोग तो आजकल टीवी देखते देखते खाते हैं। कहने का अर्थ है एट ए टाइम के आप बहुत सारी एक्टिविटी बहुत सारे कर्म नहीं करते हैं, करते हैं। मैं तो आपको केवल दो ही कर्म करने के लिए कह रहा हूं, अर्थात जो आप कर्म कर रहे खा रहे हो या दूसरा काम में लगे हैं वो करो, और दूसरा कर्म केवल भगवान का याद रखो, भगवान को स्मरण करो। उस समय आपको माला झोली लेके स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, मन से उससे होगा क्या, दूसरे विचार कम हो जाएगी आना, तो बाकी बहुत सारे काम से उलट आपको सहूलियत मिल जाएगी। अरे बहुत सारे काम कट हो गए इससे, तो केवल दो ही काम कर रहे हैं, वो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी इंद्रियों के एट ए टाइम वैसे बहुत सारे विषयों को कैच करने की आदत है। परंतु यदि हम उसको अपना जो कर्म कर रहा है उस कर्म के साथ एक ही काम दूसरा लगा दे तो वो सारे इतने सारे कामों में नहीं लगेगा और बहुत आसानी से हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम लेने से साइड इफेक्ट नहीं है, अर्थात भगवान के नाम लेने का जो हम कर्म करते हैं वो कर्म में साइड इफेक्ट नहीं है। मान लो आप खा रहे, एक काम करें, मान लो आप कुकिंग कर रहे, चपाती बना रहे, और उस समय आपके मन में एक सिनेमा जाने का विचार आया, तो आपका मन अभी प्लान करेगा कौन से थिएटर में जाना है, 4 बजे जाना है कि 6 बजे जाना है, कैसे जाना है, रिक्शा से जाना है, किससे जाना है, कैसे जाना है। तो ये आपका मन देखिए कितना प्लान कर रहा है, फिर इतना प्लान करते करते अरे चलो एक किसी और सबको साथ में ले चलते, फोन करते उनसे भी बात कर लेते, फिर और डाइवर्ट हो गया, उस व्यक्ति का विषय शुरू हो गया, फिर ऐसे अनेक एक के पीछे एक अनेक विचार उत्पन्न हो गए। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि चपाती बेल रही उस समय केवल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, कोई विचार साइड इफेक्ट आया दूसरा कुछ नहीं है, दिव्य विचार है। भगवान के नाम में शक्ति भी है, भगवान के नाम में शक्ति भी है, तो शक्तिशाली नाम लेने से हमको कुछ तो बेनिफिट होगा, 100% नहीं होगा, 5% तो होगा, 2% तो होगा, 1% तो होगा, बाकी काम करने से तो लॉस ही होता है बाकी विचार करने से। तो वैसे भी हमारे सारी इंद्रिय और मन चंचल रहते हैं, वो विषयों में लगे रहते हैं, एट ए टाइम अलग 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 विषयों का चिंतन करते रहते हैं। वो एक विषय यहाँ देंगे तो सारे ट्यून हो जाएंगे, ट्यूनिंग बोलते हैं, सारे के सारे इंद्रिया ट्यून हो जाएंगे, है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक माता अपने बालक के और कैसे ध्यान रखती है, बराबर वो उसका काम करती है किचन में, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है। इसका मतलब ये नहीं है कि चपाती जल रही है, सब्जी कच्ची रह गई है, हाथ जल गया, ऐसा नहीं, एकदम एक्सपर्ट कुक। ऐसे आपके सभी के साथ ये अनुभव हुआ होगा, इस प्रकार से है। आप कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए और अपना कर्म करते रहिए, यही कर्म है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध भी ऐसे ही करने के लिए कहा, सोचो बाण चलाना, यदि गलती जरा भी हो गया दूसरे का बाण छाती फाड़ देगा, लेकिन भगवान ने अर्जुन को युद्ध भी इस प्रकार से कहने के लिए करने के लिए कहा। हमारे तो छोटे मोटे काम है, तो वो तो कितने आसानी से हो सकते, उसमें तो कोई भी कठिनाई नहीं हो सकती, इतना डिफिकल्ट काम अर्जुन को, सोचिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।